आगे चलते हैं। सूरत नाजियात 79 नंबर सूरा 46 आयात है। इसका भी टॉपिक कियामत और किस्से मूसा और फिरौन। पढ़ के पूरी सूरत को फिर बात करेंगे। रुकू नंबर 1 1 से 26। हुब्बे दुनिया में डूबे हुए की जान कुनी, यानी वो बंदा जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ था, उसकी रूह को फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे। वन नाजियाती गर्का वन नाशिताती नाश्ता, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, और तैरने फिरने वालों की कसम, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, इसके बाद एक पीछे आने वाली पीछे पीछे आएगी। बहुत से दिल उस दिन धड़कते हुए होंगे, जिनकी निगाहें नीची होंगी। कहते हैं क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे, क्या इस वक्त जबकि हम बुसीदा हड्डियां हो जाएंगे। और कहते हैं कि ये तो फिर लौटना नुकसानदेह है। मालूम होना चाहिए वो तो सिर्फ एक खौफनाक डांट है, कि जिसके जाहिर होते ही वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे। क्या मूसा अलैहि सलाम की खबर तुम्हें पहुंची है, जबकि इन्हें इनके रब ने पाक मैदान तुवा में पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार कर ली है। इससे कहो क्या तू अपनी दुरुस्तगी और इस्लाह चाहता है, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू इससे डरने लगे। बस इसे बड़ी निशानी दिखाई तो इसने झुटलाया और नाफरमानी की, फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए, फिर सबको जमा करके पुकारा अना रब्बुकुम अला, मैं तुम सब का रब ही हूँ। तो सबसे बुलंद वाला अल्लाह ने भी इसे आखरत के और दुनिया के अजाब में गिरफ्तार कर लिया। बेशक इसमें इस शख्स के लिए इबरत है जो डरे। फेथ इन एक्शन, पहले रुकू के कुरान का इल्म हासिल करके गफलतों से निकलना है। बोलिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने आखरत के इम्तिहान में आने वाले सब सवाल बता दिए, तैयारी हमें खुद करनी है। ये कौन से हैं ये आगे आ रहे हैं? तकब्बुर से अल्लाह की पनाह मांगनी है। आगे है रुकू नंबर 2 27 से 46। मौतो हयात की सरगुजिश्त, यानी जीने और मरने के बीच की कहानियां। अअन्तुम अशद्दु खल्कन अमिस्समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या आसमान का? अल्लाह ने इसे बनाया, इसकी बुलंदी ऊंची की, फिर इसे ठीक ठाक कर दिया, इसकी रात को तारीख कर दिया और इसके दिन को निकाला। इसके बाद जमीन को हमवार बिछा दिया और इसमें से पानी और चारा निकाला, और पहाड़ों को मजबूत गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए हैं। अब जरा सा तसव्वुर की निगाह से क्यामत को देखिए। बस जब वो बड़ी आफत क्यामत आ जाएगी, जिस दिन की इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा और हर देखने वाले के सामने जहन्नुम जाहिर की जाएगी, तो जिस शख्स ने सरकशी की होगी और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी होगी, इसका ठिकाना जहन्नुम है। कुछ समझे आपने क्या सुना? हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा, तो इसका ठिकाना जन्नत ही है। अल्लाह हम ऐसा करते। लोग आपसे क़यामत के वाक़े होने का वक्त दरियाफ्त करते हैं, आपको इसके बयान करने से क्या ताल्लुक? यानी आपको क्या पता कब आएगी? अल्लाह को पता। इसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह की जानिब है। आप तो सिर्फ इससे डरते रहने वालों को आगाह करने वाले हैं। जिस रोज इसे देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही दुनिया में रहे, यानी पूरा दिन भी नहीं रहे। अशियतनो दोहाखा। अब ये सूरत आपको मुझे क्या बताती है? पहली बात तो याद रखिएगा कि कुरान आपको मुझे माजी, हाल और मुस्तकबिल की सैर करवाता है। आज मैं आप यहाँ मौजूद हैं, एक हमारा माजी था। कुरान में अभी आपने इसी सूरत में मूसा और फिरौन का किस्सा सुना, माजी और हाल की बातें थी, और मुस्तकबिल जन्नत या जहन्नम। ये कुरान का वो बलागा का मुकाम है, दुनिया की कोई किताब इसका तकाबुल नहीं कर सकती। आप हिस्ट्री की बुक खोले, उसमें सिर्फ हिस्ट्री होगी। आप फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करें तो उसमें पेशन गोइयां ही होंगी। और आजकल क्या हो रहा है, खबरें जो रोज आ रही होती हैं वो आजकल की होती हैं। कुरान वाहिद वो किताब, वाहिद वो चैनल है जो माजी की न्यूज, प्रेजेंट की न्यूज और फ्यूचर की न्यूज देता है। फिर हमने इसमें आयत 24 में फिरौन का एक जुमला सुना, अना रब्बुकुमुल आला। सलफ सालेहीन कहा करते थे कि हर इंसान के अंदर एक फिरौन बैठा होता है जो उसको दिन में कई बार कहता है अना रब्बुकुमुल आला। यानी ये है नफ्स की तरजीहात, नफ्स की बातें। आयत 40 देखिए, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही व दहन नफ्स अनिल हवा। टू प्रीरिक्विजिट्स, दो शराइत जन्नत में जाने के लिए लाजमी। और यहाँ जो ख्वाहिशात की बात है ना, इसके ऊपर पाँव रख कर गुजर जाइए। किसी ने कहा कि जन्नत कितनी दूर है, उन्होंने कहा दो कदम। पहला कदम अपनी ख्वाहिश पे रखो तो दूसरा कदम तुम्हारा जन्नत में होगा। नहन नफ्सा अनिल हवा। तो क्या हमारा दीन हमें खुश रहना नहीं सिखाता? गलत। लिखिए, हमारे दीन में सारी जरूरियात पूरी करने की गुंजाइश है और जरूरियात के साथ साथ ख्वाहिशात को पूरा करने की भी पूरी गुंजाइश है। अल्लाह हमारी नीड्स पूरी करता है तो फिर हम वॉन्ट्स पे आते हैं, फिर अल्लाह हमारी वॉन्ट्स भी पूरी करता है। जैसे माँ बाप अपने लिमिटेड बजट के साथ पहले बच्चे की लाजमी चीजें पूरी करते हैं, उसकी फीस, खाना पीना, फिर जब थोड़े से पैसे एंड ऑफ मंथ बच जाएं तो उसके लिए खिलौने भी ले लेते हैं। दो चीजें मान लें, दुनिया में भी खुश हो जाएंगे, आखिरत में भी। अल्लाह की शरीयत को और अल्लाह की मशीयत को। बस ये मेरा आपका काम है, ये मेरी आपकी औकात है। कोई एतराज ना करे पर्दे पे, कोई मर्द की चार शादियों पे बात ना करे, कोई दाढ़ी के ऊपर बात ना करे, कोई टखनों से ऊंची शलवार पे बात ना करे। अल्लाह की शरीयत और उसकी मशीयत, और मशीयत है तकदीर, जो मेरे साथ हुआ मैं खुश हूँ। रदी तो बिल्लाह रब्बन वाली कैफियत। आपको क्या पता कि आपके ऊपर जो तकलीफ और बीमारी आ रही है ये कितनी बड़ी नेमत है? कभी बीमारी भी नेमत बन जाती है, कभी मेड का ना आना भी बेहतर हो जाता है। हमारी क्लास में कोई सिस्टर थी तो वो बताने लगी कि मैं कुरान पे कैसे आई, कि इनकी मेड चली गई। अब जब मेड घर में होती है तो बंदा ये कहकर घर से नहीं निकलता कि घर में मासी को अकेले छोड़ जाऊं। पाकिस्तान में यही टोन होती है लोगों की। और मासी बड़ा प्यारा लफ्ज है, कोई बुरा नहीं है। खाला को भी मौसी कहते, मासी कहते, तो मासी है। बहरहाल वो कहने लगी कि इतने में मेरी एक दोस्त ने कोर्स ऑफर हो रहा था जो, तो उसकी दावत दी। तो मैं कह रही हूँ मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो इतनी मसरूफ हूँ। उसने कहा तुम चलो। तो वो जो पहला दिन था ओरिएंटेशन का, वो उनको वहां ले गई। जब वो वहां ले गई ना, तो वो कहती है मैंने सुना, मुझे बहुत ही मजा आया। फिर वहां बैठकर मैंने सोचा कि इस वक्त तो अल्लाह की तरफ से मासी नहीं है, तो कोई जरूरी है कि मैं सुबह की मासी रखूं। मैं कोर्स के बाद 12 बजे तो मैंने घर आ ही जाना है 12 से, तो मैं आफ्टरनून वाली ले लूं। कहती पहले से अच्छी मिली, क्योंकि उस वक्त एक्स्ट्रा होते हैं लोग, सुबह में सभी मांगते हैं। कहती मैंने पूरा कोर्स किया और वो रो रही थी ये बात कहती हुई। और उनके लिए मासी का जाना, मेट का जाना, खादिमा का जाना, खाला का जाना रहमत बन गया। तो जिंदगी में ना कई दफा जो आप पे तकलीफें आती है ना, वो याद कर ले हजरत हिजर वाला किस्सा, वो खैर के लिए आती है। फिर आप देखिए कि आयत 40 में जन्नत में ले जाने वाली ये दो खूबियां आपने मैंने अपने सामने रखी है। अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही व नहन नफ्स अनिल हवा। अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ, और नफ्स को गलत चीजों से, गलत ख्वाहिशात से रोकना। फेथ इन एक्शन क्या है कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह नहीं देनी, प्रायोरिटाइज नहीं करना इसको। अल्लाह से डरते हुए खुद को नाजायज ख्वाहिशात से रोकना है। क़यामत का तजस्सुस नहीं करना। संजीदगी से इस दिन की जवाबदेही के लिए खुद को तैयार करना है। लेकिन बात यही है, दुनिया में हम ख्वाहिशात पे काबू पा लें, अल्लाह ताला कल हमें जन्नत देगा। असल में आप देखें ना, हमारे हर गुनाह के पीछे ख्वाहिश होती। हम वो पहनते हैं जो हमारा दिल चाहता है, चाहे अल्लाह को वो अच्छा लगे कि ना लगे। हम वो बोलते हैं जो अल्लाह को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन हम बोल देते हैं। तो जिंदगी का खुलासा बनाकर इस चीज को लीजिएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की बात को बड़ा बनाना। जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला को बड़ा बनाते जाएंगे, उतना अल्लाह ताला आपके लिए उस मामले को आसान करते जाएंगे। आप देखिए कि भूख बढ़ा ले जितनी मर्जी, नींद जितनी मर्जी बढ़ा ले, सोएंगे ना और सोने को दिल करेगा, खाएंगे और खाने को दिल करेगा। शुरू में वॉक मुश्किल लगेगी, बाद में घर बैठना मुश्किल लगेगा। तो चंद दिन की जिंदगी है और पता नहीं हमारी उम्र कितनी है। मजे तो कर लिए ना। कुछ लोग आपको कहते होंगे बच्चों की सूरत में कि खुद तो सब कुछ कर लिया, अब हमें रोक रहे हैं। तो चलिए ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، اللہ نے اگر آپ کو مجھے موقع دے دیا تو کیا ہوا، اب کیا ہم گناہوں کی زندگی بسر کریں گے؟ نہیں، انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے ہم نے اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے کہ ان کے نفس پہ قابو آ جائے. یہ جو آج جتنے بےہودہ قسم کے کلچر عام ہو رہے ہیں نا، جانوروں والا کلچر، انسانوں کو جانور بنایا جا رہا ہے نا، یہ بریک سے پاؤں اٹھانا. لکھیے، نفس پہ قابو پانا کیا ہے؟ بریکس لگانا. کسی بھی گاڑی کا تصور کیجئے کہ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے بریکس فیل ہو جائیں، کیا بنے گا؟ یہ بریکس کے بغیر کی گاڑی لے کر آپ میں سے کوئی بلندیوں پہ تو نہیں جا سکتا. پستیوں میں جا سکتے ہیں آپ، بلندیوں میں نہیں جا سکتے. آگے سورت عبس ہے، 42 آیات ہیں اس کی، 80 نمبر کی سورہ ہے. عبداللہ بن ام مکتوم کا ایک واقعہ ہے، قیامت کی باتیں اور انتقام کی ہولناکیاں ہیں. آئیے ترجمہ پڑھ کر اس پہ مزید بات کریں گے. رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 42. تبلیغ دین میں فقیر اور غنی سب برابر ہیں، یعنی یہاں کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس میں امیروں کو لا سکتے ہیں اور غریبوں کے نہیں، اور نینیز اینڈ آیاز آر ناٹ ویلکم. کچھ لوگ اس قسم کا پروٹوکول چاہ رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ دین کی محفلوں میں آپ یہ شرط لگا دیں کہ یہاں غریب لوگ نہیں آ سکتے. عربوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی یہی شوق تھا. اللہ کے نبی تو سچے دائی دین تھے نا، اور سچے دائی دین کا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ کوئی سن لے، کوئی بھی ہے، چلو وہ نہیں آتے تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی اہم بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ایک سے دو بار انٹرپٹ کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا. ابن مکتوم کو تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا یہ سب کچھ، کیونکہ وہ تو نابینا تھے، لیکن نبی کے چہرے پہ ہلکی سی تیوری آ گئی. اللہ نے اس تیوری کو قرآن کی سورت کا نام دے دیا، عبسا. آئیے پڑھتے ہیں، رکوع نمبر 1 ہے، آیت 1 سے 42. دین کے معاملے میں سب برابر. وہ ترش روح ہوا اور منہ موڑ لیا، اور صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. تجھے کیا خبر، شاید وہ سمجھ جاتا یا نصیحت سنتا، اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سمرنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں. اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے، تو اس سے بے روحی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو پر عظمت آسمانی کتب میں سے ہے، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں. اللہ کی مار انسان پر کیسا نہ شکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے پھر اندازے پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستہ ہموار کیا یعنی آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا. کلا، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. آپ بھی دیکھیے گا جب آج کھانے کی ٹیبل پہ ہوں گے، فلینظر الانسان الى طعامه، کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوے اور گھاس چارہ بھی اگایا. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اب ذرا سا قیامت کا منظر دیکھیے گا. پس جب کان بہرے کرنے والی قیامت آ جائے گی، ساخا، زور کی آواز، کبھی مائک گڑبڑ کرتا ہے نا، تو اس آواز کو ذہن میں رکھیے گا، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. پس جب کان بہرے کرنے والی یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، سوچیے اپنے بھائیوں کو ذہن میں لائیے، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی، اور اپنی اولاد سے. وجہ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ان میں سے ہر ایک کو صرف ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا. और उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे जो हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी, वो यही काफिर बदकिरदार लोग होंगे। तो ये सूरत क्या बता रही है? मुतकब्बिरीन के तकाबुल में एक नाबीना का मुकदमा, जिसके पास वकील के लिए पैसे भी नहीं थे, जो बेचारा कहीं भाग दौड़ नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो इल्म का सच्चा तालिब था। ये है साहिब इल्म की शान। क्यामत तक के उस्तादों को अल्लाह ने इन आयात में ये पैगाम दे दिया कि जो भाग रहे हैं उनके पीछे ना भागो, और जो इल्म की तरफ आने वाले हैं उनके कदमों में फूल बिछा दो। तलब के बगैर ये चीज नहीं मिलती। जितना ज्यादा किसी के अंदर तलब होगी ना, वो फायदा लेगा। आप देखिए कि पिछली सूरत में फिरौन का किरदार था एक किस्म का सरकश, तागूतियत, तकबर था। खुद मूसा वहां पहुंच गए, वो ना माना। और दूसरी सूरत में आप देखें कि यहाँ मक्का वाले कुरैश, कुछ होने का एहसास, आई एम फुल ऑफ माई सेल्फ, अल्लाह का नबी उनके बीच में रहा, पला बढ़ा, उनको सब पता था ये सच्चे हैं, लेकिन नहीं माना उन्होंने। और अल्लाह ने पिछली सूरत के साथ अगर इसका जोड़ना, फैजा जाते तामतुल कुबरा कहा क्यामत को, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सा व बुरिज़तिल जहीम लिमन यरा, और इस सूरत में क्या कहा, सौखा। क्या पता चलता है कि कुरान का सबसे बड़ा गम और हम क्या है कि लोगों को क्यामत की फिक्र आ जाए। ये आपका मेरा पढ़ना पढ़ाना, ये सीखना सिखाना आपके मेरे तज़किए का जरिया बने। अल्लाह एक अंधे की इतनी कदर कर सकता है, तो आपकी मेरी कोशिशों की कदर क्यों ना होगी। आज के दौर में अगर आपको मुझे मौका मिल जाए ना इस कुरान की खिदमत का, कैसे, कुरान पढ़ के। अपने कुरान को संजीदगी से लीजिए, ये आपको मुझे बताता है। आप देखिए कि अल्लाह ने बंदे से जो मांगा है ना, वो शुक्र मांगा है, और शुक्र मिलता ही अल्लाह को जान के है। और कुरान से ज्यादा अल्लाह का तारुफ कौन कराएगा। कायनात की चीजों को देखकर भी रब को पहचान लो, और उसकी किताब को देख लो, और फिर ये जो रिश्तों की बातें हैं, आप जरा सा इसके ऊपर गौर व फिक्र करके देखें, तो इस सूरत में तज़किए की बात हुई है। तज़किया सबका होना है। अंबिया का तज़किया खुद अल्लाह ने किया, जैसे जानब से सल्लम का किया कि अबस व तवल्ला, ये आपने क्या कर दिया। दूसरा, मैं सबक क्या सिखा दिया कि जो खुद शौक से आए, सीखते भी वही हैं, जमते भी वही हैं। एक दरख्त जिसकी जड़ें जमीन से निकल चुकी हों, आप ग्लू क्या, आप एल्फी भी लगाकर उसको जोड़ दें, वो नहीं ठहरेगा। जरा सी हवा ही काफी है, आंधी की तो जरूरत नहीं है। इसीलिए लिख ले कि जो एटीट्यूड के साथ आते हैं ना, वो फायदा नहीं उठाते। जो गलतियां चुनने के लिए सुनते हैं, उनको फायदा नहीं होता। जो इल्जाम लगाने के लिए सुनते हैं, उनको फायदा नहीं होता। नबी की बातें सारे सुनते थे, यहूदे मदीना भी सुनते थे, कोई सामने आके सुनता था, कोई छुपके सुनता था। फायदा किनको हुआ? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जैसे लोगों को। और इसे एक और जुमला भी समझ ले, हमारे एक्सप्रेशंस भी नोट हो रहे हैं। किसी को देख के माथे पे बल डाला तो क्यों डाला, आंख मारी तो क्यों मारी, किसी का मजाक उड़ाया तो क्यों किया। ये वो चीजें हैं जो आपको समझ आती है। फिर आप देखिए आयत 21 में लफ्ज आया अकबरा। मैं अक्सर सोचती थी इसके ऊपर, जब कभी कुरान को शुरू में बंदा पढ़ता है तो शऊर और बेशऊरी के बीच में ही पढ़ रहा होता है ना, तो मैं सोचती थी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कब्र को नेमत क्यों कहा। लेकिन जरा से बड़े हुए तो समझ आया कि कब्र कितनी बड़ी नेमत है। तो सब्र कीजिए कि जानवरों की तरह इंसानों की लाशें भी मिट्टी में इर्द गिर्द बाहर रुल रही होती तो हमारी क्या इज्जत रहती। 3-4 घंटे गुजर जाए ना गर्मियों में, तो डेड बॉडी में से कई किस्म की बू आने लग जाती है, और मरने के कुछ दिन के बाद ही जो कैफियत होती है ना, अगर वो शीशे के किसी केज में रखी हो ना डेड बॉडी, तो सबको वो मरने वाले मरहूमीन और मगफूरीन याद आने भूल जाए, इतना बुरा हाल है। तो कब्र अच्छी मिल जाए ये दुआ किया करें। या मैं सिर्फ आपको 2-3 जुमले बता दूं, लफ्ज कब्र काफ से शुरू होता है, ये इल्मुल बलागा का एक असूल है। अलिफ बा ता सास जीम हा जा तक है ना, हर लफ्ज का भी एक आगे से फिर मानी है। काफ से शुरू होने वाले अल्फाज जिस भी लफ्ज के शुरू में आएंगे ना, उसमें काटने का मानी होगा। ये बात मैंने इन डेप्थ स्टडी में सूरह तकासुर में बताई थी। हत तजुर तुमुल मकाबिर, मकबरा, कब्र के किसको तोड़ती है? अना को तोड़ती है, आमाल का सिलसिला तोड़ती है, हड्डियों का चूरा चूरा हो जाता है, कयामत की कैंची रिश्तों की डोरियों को काट देगी, सारी मोहब्बतें खत्म, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अभी व साहिबती ही व बनी। कभी आपने इन मोहब्बत वाले रिश्तों के बारे में सोचा? आज दुनिया में हम अल्लाह से दूर भागते हैं इन्हीं रिश्तों की वजह से, कल सबसे भागकर अल्लाह की पनाह में आएंगे। लेकिन कुछ लोग बच जाएंगे, कौन? जिन्होंने फफिरु इलल्लाह का काम दुनिया में किया था, वही लफ्ज़ है इधर, या फिर और फिर। आज अल्लाह की तरफ भागिए दौड़िए, कल आपके साथ ये इंजाम नहीं होगा। आज अपने प्यारों को अपने साथ लेकर चलिए, कल वहां इंशाल्लाह वो आपके साथ होंगे। दुनिया में कोई फेल है कि पास छुपा सकता? किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव छुपा सकता? क्यामत के दिन नतीजे चेहरों पे लिखे होंगे, मुस्फिरा घबरा तरहकुहा कतरा। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स आपके चेहरों पे लिखे होंगे, छुपा नहीं सकेंगे। और ये नुकसान है इस बात का, इस बात को समझिए कि दुनिया में हक को नहीं माना तो वहां फिर अल्लाह ताला बंदे के साथ जो मामला भी चाहे उसको पूरा हक कह के वो करे। आपके मेरे लिए एक छोटी सी सोच है, वो क्या कि मैदाने हशर में जहां सिर्फ दो कदम रखने की जगह मिलनी है, हदीस है, इतना इस्तेहाम रश क्योस होगा कि लोग सिर्फ खड़े होंगे। कभी किसी शहरी के प्रोग्राम में लोगों को लाइनों में लगे खड़े हुए देखा करें। एक मस्जिद ने शहरी प्रोग्राम किया इधर अटलांटा में, और वो जो रश था उसको सामने रख लें, और तकाबुल में किसी ने अहले गजा के हक में एक मुजाहरे की तस्वीरें भेजी थी कि वहां खाल खाल लोग थे और एक भी देसी चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ फ्री सुहूर खाने के लिए लोग यौम यकूम लिन्नास क्याम करते हुए दिख रहे हैं। तो वहां तो सिर्फ दो कदम जगह मिलनी है, इस दुनिया में क्यों अपने पांव इतने पसारते हैं? वहां तो 50,000 साल रहना है, इधर इस दुनिया में तो शायद 50 साल भी नसीब हो गए तो बड़ी बात है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्यामत के दिन हर एक को नफसी नफसी होगी, मेरी जान बच जाए। अम्बिया कराम उस दिन क्या कह रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। उस दिन कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा, किसी को किसी की होश नहीं होगी। और उसके बाद फिर आपने यही आयत पढ़ी थी कि लिकुल्लि इमरिन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग्नी, वजूह हुई यौमइज़िन मुस्फिरा, शाइनी फेसेस, ग्लिटरी फेसेस, ग्लोइंग फेसेस, चमकती जिल्द सबको अच्छी लगती है, फेशियल का नाम सबको पता है, पॉलिशर सबको पता है, हाइड्रा फेशियल सबको नहीं पता, फोटो फेशियल सबको नहीं पता, टाइटनिंग सबको नहीं पता होगी, ब्राइटनिंग सबको नहीं पता होगी, लेकिन आज एक क्रीम ऐसी ईजाद हो जाए, है भी कोई $2,000 की कम से कम, और उसको लगाने का फायदा यह है कि फिर वो औरत अपनी उम्र से 20 साल पीछे चली जाती है और फिर ऐसी ही रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। कितनी औरतें जो $2,000 की कुर्बानी देंगी, वो कहेंगी छोड़ो इंडिया को इस साल नहीं जाते, छोड़ो पाकिस्तान नहीं जाते, चलो हज और उम्रे का एक ट्रिप छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है एक उसमें, चले 2,000 तो हम रो धो के ले लेंगे और कुछ अल्लाह रहम करे कर्जे ले लेंगे, क्रेडिट पे ले लेंगे, थोड़ा सा सूद ही देना पड़ेगा। लेकिन पता चले कि उस क्रीम के अंदर पिग की चर्बी है, ये है बड़ा इम्तिहान। नहन नफ्स अनिल हवा, फेथ इन एक्शन, अल्लाह के निज़ाम को आम करने के लिए कोशिशें करनी है। आप ट्रेंड बनाइए, इन कीजिए, कूल कीजिए, इट्स कूल, इट्स वेरी इन नॉट इज, अल्लाह के दीन को कीजिए, दीन की तरफ आने वालों का खुले दिल से इस्तकबाल कीजिए, अपनी हिदायत की तलब और दूसरों की हिदायत की दुआ कीजिए। कुरान से फायदा लेने के लिए इसके अहकामात पे अमल करना है और अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी। क्यामत के दिन इंसान अपने रिश्तों से भागेगा, दुनिया में भी इनके पीछे अपनी आखिरत को खराब नहीं करना। क्यामत के दिन चेहरे पर स्याही से बचने के लिए दुनिया में नेक अमाल करने हैं, अपने नफ्स को नेकियों पर आमादा करके रोज़े क्यामत अपने चेहरों को चमकाना है। अल्लाह हमारी रुसवाई से हमें बचा ले। दुआ किया करे कि अल्लाह अजिरना मिन खिज़्य दुनिया वज़ाबिल आखिरा, ए अल्लाह दुनिया में भी तुम्हारे पर्दे रख ले, कोई फितना ना आए, कोई आजमाइश ना आए, कोई शैतानी हलचल ना हो और आखिरत में भी ना हो। आगे है सूरत तकवीर, 29 आयात हैं इसकी। अल्लाह के नबी सल्लम के इखलास और कुरान की सदाकत का हल्फ है इस सूरत में। आइए देखते हैं 1 से 29। रुकू नंबर 1, कुरान रुश्तो हिदायत का चमकता हुआ आफताब है। इज़ शम्सु को विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब सितारे पे नूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 माह की हामिला ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे और जब समंदर भड़काए जाएंगे और जब जानें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी भी लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई और जब नामे अमाल खोल दिए जाएंगे और जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी और जब जहन्नुम भड़काई जाएगी और जब जन्नत नजदीक की जाएगी। अलिमत नफ्सुम, हर बंदा जान लेगा, जरा लफ्ज पे गौर करिए, अलीमत इल्म से। तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया होगा। मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले, फिर चलने फिरने वाले, छुपने वाले सितारों की और रात की जब वो जाने लगे, सुबह की जब वो चमकने लगे। यकीनन ये एक बुजुर्ग रसूल का कहा हुआ है जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले अल्लाह के नजदीक बुलंद मर्तबा है, जिसकी आसमानों में इताअत की जाती है। कौन है पता? हजरत जिब्राइल, अमीनु फिस समा जिब्राइल, और अमीनु फिस दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं, ये कौन है? अमीनु दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा भी है और ये गैब की बातों को बतलाने में बखील भी नहीं, और ये कुरान शैतान मरदूत का कलम नहीं। फाइना तस्खबून, फाइना तस्खबून, फिर तुम कहाँ जा रहे हो? ये मुंह उठाकर कहाँ भाग रहे हो? जो कोई नारा लगाता है तुम उसके पीछे चले जाते हो, हर स्लोगन को तुम थाम लेते हो। तुम्हें हो क्या क्या? गुमशुदा भेड़ों की तरह मुंह उठाए ऊंटों की तरह भागते हो? भेड़ चाल चलते हैं, लोगों के कदमों के ऊपर तुम भी कदम रखते हो, किन के नक्शे पा पे जाते हो? फाइना तस्खबून। ये तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है। कौन सा? जो आज हम पढ़ रहे हैं। बिलखसूस उसके लिए जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे और तुम बगैर परवरदिगारे आलम के चाहे कुछ नहीं जा सकते। वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आयत है इसमें ईमान से मुतल्लिक, तकवीर 21, मुताइन सम्मा अमीन। ये जिब्राइल की खूबियां, आसमानों में अल्लाह ने उनको कितनी इज्जत दी है, दुनिया में भी है। जिब्रील अमीन के जरिए वही का नजूल हुआ क्योंकि वो अमानतदार थे। लिखिए, आज भी अल्लाह ने अमानत की शर्त के साथ इस किताब की अमानत को जोड़ा हुआ है। जो अमानतदार होगा अपनी मर्जियां नहीं पेश करेगा, कुछ निकाल कर कुछ डालेगा नहीं इस कुरान के साथ, अल्लाह उसी को इस कलाम की खिदमत का मौका देगा। फिर इसमें हमने जिंदा गाड़ी बच्चियों की बात की, वैजल मऊदत सुईलत। हकीकत है कि मक्का वाले इस तरीके से बच्चियों को खत्म करते थे कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह आज की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि खुदकुशी करने वालों में अक्सरियत लड़कियों की होती है। और 2018 की एक रिपोर्ट मैंने शेयर की थी कि जिसके तहत पता चला कि 1.6 मिलियन यंग बच्चे बच्चियों ने यूएसए में खुदकुशी की अटेम्प्ट की थी। अटेम्प्ट करने वाली लड़कियां ज्यादा होती हैं और कामयाब लड़के ज्यादा होते हैं। क्यों आज की औरत इतनी परेशान क्यों है? सारी आज़ादी उसको मिल गई, कपड़े पहनो ना पहनो, बदल लो, ये करो, कुछ भी ना करो, लेकिन इसके बावजूद औरत आज इतनी परेशान क्यों है? उसकी वजह क्या है कि हमने औरत को औरत नहीं रखा। हमने आज उस औरत के लिए वो मुख्तलिफ काम रख दिए जिसके लिए अल्लाह ने उसको पैदा ही नहीं किया। तो उन जालिमों का जुल्म क्या था कि माँ के पेट से निकलती बच्ची को जमीन के पेट में भेजते? आज के लोगों ने भी कुछ कम नहीं किया। हजरत सुराका बिन मालिक से एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे अफसल सदका ना बताऊं? हमारा भी दिल करता है ना, तो बेटियों वाले जरा कान खोल कर सुने। तेरी वो बेटी जो पलटा दी जाए, यानी बेवा हो गई या तलाक हो गई, वापस आ गई माँ बाप के घर में, भाई के पास आ गई, बाप के पास आ गई, और तेरे सिवा इसका कोई कमाने वाला ना हो, इसके खराजात बर्दाश्त करना अफसल सदका है। ये सही रिवायत है इबन माजा की 3667। इस पे नजर रखते हुए कभी अपनी बच्चियों को ताने ना दिया करें, और अल्लाह ना करे कोई बच्ची किसी बच्चे के साथ पलटा दी जाए। वैसे अपने घर में रहते हुए बेटी जब मैके आती है तो सब लाड देखते हैं, बच्चे भी आंखों का तारा होते हैं, मामू भी उठा उठा के फिर रहे हैं, खालाएं भी बिचती हैं, माँ बाप भी। लेकिन अगर अल्लाह ना करे वही बच्चा माँ के साथ हमेशा के लिए आ जाए तो बोझ बनता है, फिर उसका आटा पानी दूध भी गिना जाता है। अल्लाह ना करे कोई वापस आए, जिनके बच्चे वही पाले, किसी दूसरे का बच्चा कोई ना पाले। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये NCH की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इन सारे फितनों से निकलने के लिए आज आपको मुझे लोगों को ये कुरान देना होगा। ये है बलाग, ये है इंसानियत के दुखों की दवा। और इस रिपोर्ट में ये तक लिखा हुआ था कि पहले मर्दों का ज्यादा रुझान शराब की तरफ था, अब औरतें ज्यादा शराब पीने लगी। औरत अंदर से बहुत परेशान है, बिलीव मी, माने ना माने, आपने उसके जिस्म को अपनी जागीर बना लिया, उसकी कमाई को आप अपनी कमाई समझते हैं। जो औरत कमाने लगती है उसका मर्द तो एक हाथ पहले पीछे खींचेगा ना कि है इसके पास, और हम कहते हैं आजादी आजादी, ये कैसी आजादी है, ये खुद मुख्तारी है, ये तो परेशानी है। खुदा मुख्तारी को कबूल कर ले, खुद मुख्तारी की जरूरत नहीं रहेगी। तो याद रखिए कि हम औरतों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है, हम खुद अपनी कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारी कदर। और यहाँ एक छोटी सी बात लेकर अपने आप को कब्र में तसव्वुर कीजिए, जिंदगी गुजर जानी है, गुजर रही है, आप आगे पता नहीं कितनी है, अल्लाह करे अच्छी हो, ज्यादा ही हो, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं है। लेकिन चलिए अपनी कब्र को सोचें और एक जुमला सुने, कब्र आमाल का संदूक है, सोच लें कि क्या पैक कर रहे हैं, जो पैक करेंगे इधर से वही इंडिया पाकिस्तान जाकर खुलेगा। अगर आपको अपने अमालनामे में स्याहियां दिख रही हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डोंट बी डिप्रेस, नदामत के चंद आंसू बहा दीजिए, क्योंकि हमारे नदामत के आंसू ही हमारे अमालनामे को धोएंगे इंशाल्लाह। और ये जो जुमला है ना, अलीमत नफ्सु मा अहदरत, हर नफ्स खूब जान लेगा कि उसने जो हाजिर किया था। तो आपकी मेरी नेकियों के वॉलेट में कितनी नेकियां हैं, इसका इल्म सबसे ज्यादा मुझे आपको है। मेरे अकाउंट में कितनी मनी है, मेरी बैंक स्टेटमेंट क्या है, ये मुझे सबसे ज्यादा पता है। तो आपको मुझे इतने नाइव नहीं बनना, इतने बोले ना बने कि हमें नहीं पता, हम पता नहीं किधर जाएंगे। अपनी भाग दौड़ देखिए, अपने दिल के सुकून को देखिए, अपने अंदर की बेचैनियों को देखिए और हिर्स को देखिए। लोग तो हमारी वो नेकियां देखते हैं ना जो हम इनके सामने करते हैं, हमें खुद उन नेकियों का भी पता होता है जो हम कर सकते हैं और नहीं करते। अल्लाह बचा के रखे। और सूरत के एंड पे आयत 29 में देखिए, वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, एक तेरी चाहत और एक मेरी चाहत। इंसान सीधा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता जब तक इंसान की चाहत के साथ अल्लाह की मशीयत और तौफीक शामिल ना हो। तो अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तू मेरे लिए चाह ले कि मैं सीधा रास्ता हूँ। वो कहता है ना, मेरी तो दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए, अल्लाह तू खुद ही मेरा मुंह फेर दे नेकियों की तरफ, मेरा दिल बदल दे, इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि क्यामत के दिन हर पोशीदा चीज जाहिर हो जाएगी। अपने मामलात को शफाफ रखिए, क्रिस्टल क्लियर मामले रखिए, खास तौर पर अगर आपको दीन का काम करना है, कोई वहाम, कोई एम्बिगिटी, कोई डाउट्स, कोई ऐसा धब्बा अपने ऊपर ना रखिए कि लोगों को मौका मिल जाए। बात कुछ भी नहीं होती लेकिन शैतान बात का बतंगड़ बनवा देता है। और अल्लाह से भी दुआ किया करें कि अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना वा मेरवातिना, रस्मों के नाम पर अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। जो हिदायत चाहेगा इसे कुरान ही से हिदायत मिलेगी, इसलिए अपना वक्त जिंदगी का इसी पे लगा दीजिए ताकि आप इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजार सकें। और यकीन कीजिए कि जिसने इस किताब को अपनी जिंदगी में जगह दे दी फिर समझ आएगा। और ये जो कियामत की जितनी भी हम सूरतें पढ़ते जा रहे हैं ना, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि कियामत की ये दिन दुनिया का बैलेंस खराब हो जाएगा? जैसे अम्ब्रेला होती है ना, सीधी होगी तो खुल जाएगी, कोई बच्चा उसके अंदर की तारें टेढ़ी मेढ़ी कर दें तो खुलती नहीं, आसमान इस तरह लूज होगा। जब आसमानो जमीन इतने बड़े बड़े इस तरह हो जाएंगे तो आप और मैं छोटे से हैं क्या। अब इसको सुनिए सूरत इन्फितार की रोशनी में, कि जिसके बारे में मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ कि आंखों देखा हाल।